पदमाभयं तत्, उस पद को वो प्राप्त करता है जो दंड से मुक्त हो गया है। और इसका संज्ञा क्या है? सुख दुख मान अपमान, दिन रात ठंडी गर्मी, इसको जब तक मन महसूस करता है तब तक वो द्वंद्व से मुक्त नहीं है, भगवत धाम जाने की लायक नहीं है। क्योंकि भगवान की जगत ही निर्द्वंद है और हमारे जो पद है यहां एक पद है, हम दूसरे को नहीं देखते, हम कंपैरिजन करते हैं। तो इससे ही द्वेष होता है, आई एम द बेटर देन अदर्स, इससे उत्पन्न होता है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, इस निर्द्वंद जगत को कौन प्राप्त करता है, बा इस पद को प्राप्त करने के लिए कौन योग्य है? भगवान राम वनवास से वापस आने के बाद हनुमान, जांबवान, अंगद तो सबके सामने बैठ कर के सबकी प्रशंसा कर रहे थे, आपके कारण हमको विजय मिला, तो सबकी प्रशंसा की। परंतु हनुमान को कहे, हनुमान आपका ऋण को मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा और आपकी सेवा को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। द प्रभु, मैं क्यों आपके लिए सेवा किया? भगवान राम कहे, मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए किए हैं। आप जैसे हितकारी परोपकारी भक्त मिलना बहुत कठिन है, इसलिए मैं आप जैसे भक्तों को अपने हृदय में स्थान देता हूं। कहते प्रभु, तो कहिए मैं कौन से उपकार किया हूं? बानर जाति के हूं, लोग तो बहुत कहते हैं कि ये बहुत सुंदर है, माता भी कही ये कौन है इतने राम के चरित्र को वर्णन करता है। मैं कहा, माते कथा तो बहुत सुंदर है लेकिन बोलने वाला बंदर है। मेरे तो कोई ये नहीं, मुझे जो देखता है सवेरे उठ करके उनको भोजन भी नहीं मिलता है, मेरी इसी दशा। राम जी कहे, नहीं नहीं हनुमान, तुम्हारे कारण ही किष्किंधा के राजपद किसको मिला? अंगद को, सुग्रीव को मिला, नहीं अंगद है ना, सुग्रीव, सुग्रीव को मिला, फिर अंगद को बनाया ना अंगद। भगवान राम बोले कि आपकी वजह से कि अंगद को ये पद मिला, और आप नहीं होते तो विभीषण भी लंका की पद प्राप्त नहीं करता। और मैं क्या कहूं, इतना तो मैं कह सकता कि आपकी यदि सहायता नहीं होता तो मैं आपस आकर ये अयोध्या की पद भी प्राप्त नहीं करता। हालांकि तो भरत तो नहीं चाहते थे, लेकिन आपको मिला क्या? ये बात सुनकर कि हनुमान जी कहे, प्रभु आप सबको एक एक पद मिला है लेकिन मुझे आपकी दो पद मिल गया है चरण कमल की। इसलिए जो भगवान की दोनों चरण को प्राप्त कर लेता है वो निर्द्वंद हो जाएगा, उसको द्वंद में नहीं रहेगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम में ये सिद्धांत है, ये अन्य अरविंदाख्य विमुक्त मानिनः त्वयस्तभाव अभिशुद्ध बुद्धय आरुज्य कृच्छेण परम पदम ततम पतन्ति अधम मनाद्रुतम जुस्मद अंग्रय। जुस्मद दोनों चरण कमल को जो छोड़ देता है वो कितनी बड़ी पद को भी प्राप्त कर ले, पतंति अधो, तुरंत वो गिर जाता है। इसलिए अहंकार ही सबको, हम सबको एक एक पद दिया है। और कौन सा पद दिया है, कौन सी पोस्ट? अहंकार कौन सा पद प्रदान करता है? हाँ, कर्ता पद। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हं इति मान्यते, कर्ता। लेकिन जिनको दो पद प्राप्त हो जाता है उनके अहंकार नहीं है, उनकी कार बेकार हो जाता है। क्योंकि जुगल सरकार को प्राप्त कर लेता है, उनकी चरण कमल में अपने मति को लगा देता है, इसलिए अहंकार पद को लेकर के वो नहीं यात्रा करता है। ये अहंकार के वजह से ये भौतिक शरीर है। इसलिए नारद जी कह रहे हैं इस परधर्म को पालन करने के लिए व्यक्ति के अंदर इस मत्सरता आदि रोग को दूर करें, वाणी से, मन से और शरीर से। कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा, ये परो धर्म भागवत धर्म के वर्णन में ही कह रहे हैं। नवजोगिंद्र में एक थे, कौन थे? कवि पुनिमी महाराज को बता रहे हैं, शरीर से, वाणी से, मन से। बुद्ध्यात्मनाम ज अविश्रुत स्वभाव करोति जत्तत् सकल परस्मै नारायण एति समर्पयेत। ये जो कुछ संसार में कार्य और कारण है ये सब ही भगवान है। इसलिए व्यक्ति द्वंद्व से मुक्त होने के लिए परम कारण को जानना चाहिए। परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो इसलिए जो व्यक्ति यज्ञादि संपन्न करता है तो इसकी लक्षण कहते हैं कि द्रव्य यज्ञिर यक्षमाण दृष्ट्वा भूतानि विभ्यति। और जिसको लेकर के वो यज्ञ करता है वो यज्ञ की हवीर जो है, जो हम प्रदान करते हैं, जिसको कहते द्रव्य, इस द्रव्य ही वस्तु हो सकता है, काइंड बक्के से हम कहते हैं, वो वस्तु हो सकता है, बातचीत भी हो सकता है, पशु बलि आदि। इसलिए भगवान कहते हैं भगवत गीता में, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञान्त्वा विमुख्यसे श्रेयान द्रव्यमय यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्व कर्मं खिलं पार्थ ज्ञाने परी समाप्यते। कति ये कर्म जान विद्धि तान सर्वान, ये कर्म से उत्पन्न, कर्म जान, कर्म का उत्पन्न वस्तु क्या है? भोग। कर्तापन आने से भोक्तापन भी आ जाता है। परंतु भगवान तो कह रहे हैं कि यज्ञ के बिना जीवन धारण बहुत कठिन है। नायम लोकस्ति यज्ञस्य कृतन्य कुरु सत्तम, अयम मतलब इस लोक में और इस जीवन में यज्ञ के बिना जीवन धारण करना बहुत कठिन है। और फिर भगवान कहते हैं कि इस यज्ञों को केवल कर्ममय समझकर उसको त्याग देता है। गीता में भगवान कहते यज्ञों को कभी त्याग नहीं करना चाहिए। तीन चीज को त्याग कभी नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज? गुड, आपका नाम क्या है, बोलो श्लोक। पा बनानी गुड हरे माधव बहुत अच्छा संस्कार है, इससे सब बच्चों को सिखाना चाहिए, एग्जाम्पलर है, जो माँ बाप भी हैं उनके धन्य हैं। कभी यज्ञ दान और तपस्या को त्याग नहीं करना चाहिए, ये तीनों चीज बड़े बड़े मनुष्यों को भी पावन व पवित्र करने वाला है। फिर भी भगवान कहते हैं कर्मजान विद्धि तानसवान एवं ज्ञान तो अभिमुख्य से, इसको जान करके वो मुक्ति प्राप्त करता है, नहीं तो ये यज्ञ ही कर्म बंधन क्रिएट करेगा। कौन सी यज्ञ बंधन क्रिएट करता है, क्या गीता के श्लोक है बताओ, यज्ञार्थत कर्मण अन्यत्र लोकायम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कुंतेय मुक्त संग समाज। कौन सी कर्म करना चाहिए, मुक्त संग समाज वही कर्म करना चाहिए, वो यज्ञ की प्रयोजन है जो विष्णु है उनको संतुष्ट करता है। और प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं यज्ञ कर्ता को ये जानना चाहिए, इसको कहते हैं ना जो ऐसे न समझ अतत्वज्ञ, वो तत्व को नहीं जानता है लेकिन यज्ञ करता है। महाराज बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन हुआ है, भूमि पूजन होगा, आपको निमंत्रण है, लेकिन वो यज्ञ में बैठने वाले का भी आंख जलता है, नाक से पानी आंख से पानी गिरता है, कपड़ा भीग जाता है, कब खत्म होगा। कहते ये अज्ञानी व्यक्ति होते हैं अतत्वज्ञ, कहते सर्वप्यते यज्ञ विदा यज्ञ खपीत कल्मसा। विभिन्न प्रकार की यज्ञ द्रव्य यज्ञ स्वाध्याय यज्ञ योग यज्ञ की उपयुक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सबका एक उद्देश्य है और वह है इंद्रियों की निग्रह। इंद्रियों तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है, अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद की नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। और प्रभुपाद 4.32 कर्मजान विधि, जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि वेद में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों के उल्लेख है, क्योंकि लोग देहात्मा बुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है मनुष्य उन्हें अपने शरीर मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके, किंतु देह से मुक्त होने के लिए इन सब का विधान है। इसकी पुष्टि यहां पर भगवान ने अपने मुख से की है। ये सब क्रियात्मक है, जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा द्रव्य यज्ञ के स्तर तक पहुंच जाती है तो उससे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं पहुंचता है। जिस द्रव्य को हम आहुति देते हैं उसके भी कोई लाभ नहीं होती है, जो द्रव्य के रूप में पशु, और यज्ञ करने वाले जो पुरोहित हैं, जो कर्ता हैं, जो होता है, और क्या है, चार प्रकार होते हैं ना, उद्गाथा होता ब्रह्मा रुद्रयोर, ये चार प्रकार की पुरोहित होते हैं यज्ञ संपन्न करने के लिए, इन किसकी कल्याण नहीं होती है। इसलिए नारद जी के प्रसंग हम सुनते हैं कि वो देखे कि ऐसे एक बड़ा राजा था, उसका नाम क्या था जो यज्ञ संपन्न करता था पशुओं को बलि देकर, कौन, राजेन्द्र, ये चौथा स्कंद में कथा है। तो नारद जी की मन में बहुत दया हुई, क्या देखो ये निर्दोष पशुओं को निर्दय होकर के कैसे मार रहा है, साधु के हृदय ना इन जीवों के प्रति जो कष्ट हो रहे हैं उसको देखकर द्रवित हो जाता है। सदय हृदय दर्श सीता पशु घातम, इसलिए भगवान के अवतार हुए जो इस यज्ञ विधि को भी बंद कर दिया, अरे बंद करो इसको, कुछ लाभ नहीं इससे, ये यज्ञ करके क्या फायदा है? निंदस्य यज्ञ विधे रह रहा। कितना दुष्ट है ये, कितना निर्दयता है उनके अंदर। सदय हृदय दर्शिता पशु घातम, इस पशुओं को मारते हैं। इसलिए नारद जी के मन में बहुत करुणा हुई और राजा के पास आए। हम उपदेश देना हमारी कर्तव्य है, और प्रभुपाद का आंदोलन यही है कि लोगों को सत्य शिक्षा दिया जाए, मार्गदर्शन दिया जाए, सबको सत मार्ग में चलने के लिए उपदेश दिया जाए। ये कृष्ण भावना आंदोलन का मुख्य है, प्रीचिंग इज एसेंस। लोगों को समझाएं, उनकी मनोभावना को परिवर्तन किया जाए, तब फिर संसार में धर्म की स्थापना हो सकता है। और अर्जुन की तरह कभी 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 शास्त्र से नहीं सुने तो शस्त्र उठाना चाहिए, क्योंकि यही शिष्य के कर्तव्य है। जो सुने हैं गुरु से, वो कभी कभी समय पर शास्त्र का जब काम नहीं करता है तो शस्त्र उठाना चाहिए। भगवान स्वयं शास्त्र को समझाने के लिए गए दुर्योधन को, लेकिन क्या समझा? तो फिर शस्त्र उठाना पड़ा। तो नारद जी पहले अटम गए कि मैं उनको समझाता हूं। प्रचिन वैर के पास गए और कहे, महाराज आप जानते हो जो आप कर्म करते हो इसके परिणाम क्या होगा? ये निर्दोष पशुओं को आप यज्ञ में बलिदान कर रहे हैं और वो आपकी राह देख रहे हैं। आप जब मरोगे तो फिर जमजातन आपको भोग करना पड़ेगा, और उनकी नुकली सिंह से आपके शरीर को टुकड़े टुकड़े करेंगे। कदर देखो, भो प्रजापते राजन पशुन पश्यंतो याध्वरे संज्ञा पीतन जीव संज्ञा निर्गुणे न सहस्रशः। तुम यज्ञ स्थल में जिन जिन पशुओं को निर्दयता पूर्वक वध किया है उन्हें आकाश में देख रहे हैं। एते त्वं संप्रतिख्यन्ते स्मरन्तं वैशसंतवः संपरेतम अयम कूटैः छिदन्ति उत्थितमन्यवः। ये सारे पशु तुम्हारे प्रतीक्षा कर रहे हैं जिनसे उन पर किए हुए आघात का बदला वो ले सके। तुम्हारी मृत्यु के बाद वे अत्यंत क्रोधपूर्वक तुम्हारे शरीर को लोहे की अपने सींग से बेद डालेंगे। लोग परिणाम नहीं जानते, इतनी असुर बन गए हैं। ये आसुरिक सभ्यता इतनी बढ़ रही है जोर से, और प्रभुपाद शायद 9 मास स्कंद में 10 मास स्कंद के 3रा अध्याय में जो कोविड चल रहा था, मैं 7 पॉइंट निकाला था प्रभुपाद के प्रपट से कि महामारी के कारण क्या है। प्रभुपाद एक कारण बता रहे हैं कि निर्दय पशुओं की ऊपर ऐसे हत्या करना, अवैध संतान के उत्पन्न, व्यभिचार बढ़ रहा है, और तीसरा था ब्राह्मण संस्कृति के प्रति अनादर होने से परशुराम कोविड के रूप में, महामारी के रूप में प्रकट होते हैं। और जैसे 21 बार संहार किए थे कौन? परशुराम। तो इसी प्रकार ये कोविड का भी क्या चला, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे है ना। तो ये पशु हत्या जो है ना, ये बहुत बड़ी पाप है, और ये नारकीय जीवन बिताने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसलिए प्रभुपाद परपट में लिखे हैं, ईसा मसीह के मन में भी दया आ गई 12 साल में। उन्होंने कहा नहीं, ये ओल्ड जो रीति आ रही है इसको फेंको, मैं नहीं मानता हूं। तो राम के चरित्र में हम देखते हैं कि सबरी के जब विवाह होती है तो सबरी ने मां से पूछी, मां आज मेरी बाल को आप श्रृंगार कर रही हो, हम तो भिलिन जाति के हैं, क्या आज अवसर क्या है? अरे बेटी तुमको पता नहीं, आज तुम्हारा मंगल दिन है, कल तुम्हारा विवाह होगा। अच्छा, वो भी 12 साल की थी सगरी, और मां ने तो बाल को श्रृंगार कर दी। और जब घर के अंदर आती है और देखती कि उस घर में कुछ पक्षियां हैं, कुछ पशु हैं, सब उनको बंदी बना के रखे, तुरंत मां से पूछने लगे, मां इनको बंदी बना के क्यों रखे हैं, घर के अंदर से दरवाजा बंद करके क्यों रखे हो। अरे बेटी, विवाह उत्सव में जो बारात आएंगी उनके लिए मांस भोजन होगा, और इस पशु और पक्षियों के मांस भोजन कराएंगे। ये सुनती ही सवरी की हृदय फट गया, कहते मां मेरी विवाह के लिए इतनी पशु और पक्षियों की हत्या। और तुरंत गई, दरवाजा खोल दी, और सारे पशु और पक्षी उड़ते हुए कहे कि आज हमको आप मुक्त कर दिए, तो तुम्हारी मुक्ति की मार्ग भी भगवान करेंगे। उसके बाद सबरी घर में नहीं रही, जंगल चल गई, वहां एक पेड़ के नीचे बैठ गई, रोती हुई सोचने लगी क्या करे, कहां जाऊं, किसकी आश्रय लो, ऐसे मनुष्य के आश्रय में लगकर कि जीवन की कोई उन्नति नहीं हो सकती है, अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकती हूं। विवश होकर होकर व्याकुलता से वहीं पेड़ के नीचे बैठ करके रोदन करने लगी। तुरंत आवाज सुनाई पड़ी, बेटी सेवा। सोचने लगी सेवा, किसकी सेवा करो, साधुओं की। चल पड़ी, ठीक है, आश्रम है लेकिन भिलिनी जाति की है, कौन उनको आश्रम में रखेगा, कौन सेवा देगा, सब घृणा करते। इसलिए अर्धरात्रि में उठकर सबरी उस आश्रम को पवित्र करती गोबर और मिट्टी से, जंगल जाकर के लकड़ी तोड़ के लाती थी दिन में, और रात्रि में आश्रम में रखकर के आ जाती। सब पूछते कौन करता है ऐसी काम। मातंग ऋषि ने शिष्यों से पूछे, ये सेवा कौन करता है, आप करते हो। नहीं नहीं गुरु जी, भोजन करने के लिए टाइम नहीं मिलता, ये सब काम मुझे। दूसरे शिष्य से पूछ रहे हैं, अरे गुरु जी आपकी जो मैनेजमेंट है उसमें तो फंसा रहता हूं, ये सब काम कौन करेगा, कोई नहीं। महात्म से फिर ऐसे छोटे सेवा कौन करेगा, क्योंकि उनके आश्रम में सब हाई फाई सब ब्रह्मचारी थे, हाई प्रोफाइल मेंटेन कर रहे थे, गाड़ी घोड़ा नहीं था उस समय लेकिन हाई प्रोफाइल था। तो मातंग ऋषि ने एक शिष्य को कहे, तुम थोड़ा देखना कौन ये सेवा करके जाता है। एक दिन अर्धरात्रि के बाद देखे कि एक स्त्री महिला कुचला वस्त्र पहना है, वो लकड़ी रख कर चल गई। कुचला रे, कहां जा रहे हो, कौन हो तुम, रुको, ये डर के मारे भाग रही थी। तो कुछ ऐसे लोग गए, उनको पकड़ करके लाए, मातंग मुनि के सामने प्रस्तुत की। मातंग मुनि ने पूछे, बेटी तुम क्यों ऐसे तुच्छ सेवा कर रहे, क्या कारण। गुरु जी, नीच जाति में जन्म लिया हूं, भगवान के प्रति जो प्रीति है वो घर में रहने नहीं दिया, और आपकी आश्रम की परंपरा मुझे आश्रम में नहीं दिया, इसलिए मैं करूं क्या, जंगल में रहती हूं लेकिन सेवा करना मेरी धर्म है। इसलिए गुरुजी मैं डर रही हूं कि यदि कुछ मेरी त्रुटि हो गई, भूल हो गई, मुझे क्षमा करना। इस प्रकार दुस्साहस कभी मैं जीवन में आगे नहीं करूंगी। मातंग ने उनके मनोभाव को जान ली और कहे, आश्रम में स्त्रियों को तो स्थान नहीं है, लेकिन आज से तुम मेरी बेटी हो और तुमको मैं अपने आश्रम में स्थान दिया, एक दूर स्थान में आप रह सकते हो और निरंतर प्रभु के नाम को आप स्मरण करो। सबरी पूछ रहे हैं कि आपके शिष्य ने आपको विरोध नहीं करेंगे, समाज विरोध नहीं करेगा, साधु समाज। मातंग ऋषि ने कहे, मातंग का मतलब है हाथी है। हाथी जब चलते हैं, चलता है, उसके पीछे कितने भी कुत्ते सब भुगते हैं, लेकिन हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटी तुम निर्भयता से रहो और भगवान के भजन करो। इस प्रकार समय बीतते गया। शरीर के लिए तो ये सत्य है, चातस्य ही ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्मा मृतस्य च, एक समय आता है, ये काल की गति है। काल कर्म गुणाधीना देह यं पंच भौतिक, ये शरीर तो काल के वश में है, वो परवश है, कर्म के वश में है, गुण के वश में है, संबंधे हुए। समय जब आ गया, शिष्य लोग बैठे हैं मातंग मुनि के पास, रो रहे हैं। सबरी ने भी पहुंच गई और कहने लगी, गुरु जी सब आपके शिष्य कह रहे हैं कि आप जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? बेटी सबको एक दिन जहां पर जाना पड़ता है। फिर पूछने लगी, कब आप लौट करके आएंगे गुरु जी? अरे बेटी वहां जाने पर कोई लौटता नहीं है। जदगत्वा ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम। तो मातंग ऋषि से सवरी ने कहने लगी, गुरुजी यदि आप नहीं रहेंगी, चल जाएंगी, तो मैं कैसे जीवन धारण करूंगी, मुझे कुछ उपाय बताइए, नहीं तो मुझे लेके चलिए, मेरी तो जीवन की संबल आप ही हैं, आपके बिना कैसे मैं जी सकती हूं। मातंग ऋषि ने कहे, बेटी आप मेरी साथ रहोगी, मेरी कृपा के साथ आप रहोगी और तुम्हारी ये सेवा परायण जो भाव है, एक दिन प्रभु को यहां बुला लेगी और प्रभु तुम्हारी कुटिया में आकर तुमको दर्शन देंगे। गुरु जी प्रभु आएंगे? कहते हाँ, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर। इस प्रकार सबरी ने गुरु जी जाने के बाद उनके आशीर्वाद को आधार बनाकर वो प्रतिदिन अपने नित्य कर्म करते हुए प्रतीक्षा करती थी, प्रभु कब आएंगे, मेरे गुरु जी के वचन असत्य नहीं हो सकता है। ऐसे समय बीतते गया, कितने साल तक सबरी प्रतीक्षा की? 10,000 साल बीत गया। प्रतिदिन प्रभु आएंगे, मैं कैसे उनको स्वागत करूं? जंगल में जाती, कुछ पेड़ तोड़ के लाती और सोचती कुछ इस पत्ता की चटाई बना लो, और ये सेवा भाव, ये दया भाव, इसको मेंटेन करके रखी, जैसे कि स्वयं भगवान राम एक दिन आए। ये तो लंबी कथा है, समय हो रहा है, तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि मेरे गुरु महाराज हमेशा कहते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड बट यू एक्ट सच ए वे दैट सुप्रीम लॉर्ड विल कम टू सी यू। हम ऐसे ही सेवा संपन्न करना चाहिए ताकि प्रभु हमारी सेवा से संतुष्ट होकर हमको दर्शन दे, नहीं तो सेवा के बिना ये केवल दर्शन एक आंख की कसरत है, आई एक्सरसाइज है। इसलिए भगवान को दर्शन करने के लिए सेवा कौन सी है? श्रवण की सेवा है। पश्यन्ति कर्ण चक्षुषा विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो भगवत प्रेम को हृदय में पहले प्रकट करना होता है, फिर बाद में दर्शन। भक्त्या तु अनन्या सक्यम अहमेव विदः अर्जुन ज्ञान्तुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रविष्टुं च परन्तप। तो जानना चाहिए और फिर दर्शन होता है। दर्शन का मतलब है ज्ञान, और जिसके पास ज्ञान नहीं है उनके पास केवल रहता है प्रदर्शन। क्या रहता है? प्रदर्शन, दर्शन। तो मैं पिछले बार भी बताया था प्रदर्शन कौन की थी? सुपर्ण का। इसलिए लक्ष्मण जी ने क्या किया, उनकी कान काट दी, क्योंकि सुनती नहीं थी। कितने भाव लेके आई थी राम से विवाह करने के लिए, हो गया उनकी वेडिंग सेरेमनी, लक्ष्मण जी करा दी। तो इसी प्रकार जो सुनता नहीं है वो भाव दिखाता है। कभी कभी पंजाब हरियाणा में लोग गीत भी गाते हैं, आह कितनी मजा आ गया प्रभु जी, नाच ले न दे मुझे नाच ले न दे, बजता है तो नाचते और भाव उत्पन्न। और जब श्रवण की कतरा होता है तो ये सब दर्शन फिलोसफी हमारे कान में नहीं जाता है, नींद आ जाएगा जरूर। तो इसी प्रकार अज्ञानता से किया हुआ कर्म का परिणाम क्या होता है, नारकीय स्थिति को प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवतम की 26 अध्याय में जो इसी प्रकार पशुओं को मारता है बिना ज्ञान से, उनकी क्या गति होती है, कौन सी नरक को प्राप्त करता है, ये 26वां श्लोक है। जो व्यक्ति इस जन्म में अपने उच्च पद पर गर्व करता है और केवल भौतिक प्रतिष्ठा के लिए पशुओं को अविचारी रूप से बलि चढ़ा देता है, उसे मृत्यु के पश्चात वैशासन नामक नरक में रखा जाता है। वहां जम के दूध उसे अपार पीड़ा देकर अंत में उसकी बद्ध करते हैं। और भी उसके पिछले श्लोक में दिया है, जंगल में आखेट करने तथा उनके द्वारा वृद्धा ही पशुओं को मारने में अत्यधिक रुचि लेता है, तो मृत्यु के पश्चात वो प्राणरोध नरक में डाल दिया जाता है। तो पशुओं के प्रति इसी प्रकार अविचार करने वाले, हिंसा करने वाले के लिए दो नरक तो पहले से प्रिजर्व है, रिजर्वेशन है, वैशासन नरक और प्राणरोध, उसके प्राण पे इससे उसको गले को दबाते हैं। और भी एक नरक है, तीन नरक हैं, जिसमें जो पशुओं के मांस खाए हैं इनकी मांस को ऐसे ही उबला हुआ तेल में कढ़ाई में डाला दिया जाता है, बहुत चिल्लाता है। तो इसलिए ये पशु हत्या जो है ये ईर्ष्या भी है। हम किसकी गुण के प्रति हम आकर्षित नहीं होते, उनको गुण नहीं देख पाते हैं, वो भी हिंसा है। हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल तो एक्सटर्नली फॉलो करते हैं लेकिन इंटरनली तोड़ते हैं। ये सुपरियर पावर, हम सोचते हैं कि हम दूसरे से बेटर है। ब्रह्मचारी सोचता है ये तो गृहस्थ गिरा हुआ है पत्नी बच्चों के साथ, वो अपने को सुपरियर समझता है। और गृहस्थ भी कभी कभी सोचते हैं ये ब्रह्मचारी केवल लाल कपड़ा डालते हैं उनके पास, हम जानते हैं लड़की के चक्कर में है ये। तो ऐसे ही एक दूसरे से सब अपने को सुप्रीम सुनते, मैं तो बहुत बेटर। कई भी गृहस्थ भी कह देते हैं, ब्रह्मचारी भी ऐसे भी कहते हैं। तो इसी प्रकार जो मनोवृत्ति है हमको परधर्म पालन करने में मदद नहीं करेगी, इसलिए दूसरे के गुण को देखें, अपने अंदर दैन्यता नम्रता भी लाएं, तो परधर्म अपने आप प्रवेश करेगा। यदि स्विस गेट नहीं है तो गंगा के जल समुद्र में प्रवेश करता है। तो हमारे यदि भाव ऐसे अवरोधपूर्ण हो जाता है तो प्रभु के प्रेम रूपी समुद्र में हमारे भाव मिल जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत धन्यवाद। एक बार दो क्वेश्चन हम ले सकते हैं, यदि किसकी इच्छा तो पूछ लीजिए। यस राजीव प्रसन्न। अच्छा आप मधुसूदन, ठीक है। एक एक प्रश्न है वहां से, माइक उनको दीजिए मुझे।
जैसे क्षत्रियों कहा गया शिकार के लिए नए जनरल, और यहाँ कहा गया कि कैसे समझे।
हाँ यज्ञ के लिए जो विधि था पहले कि त्रेता में ये विधि था, यज्ञ में पशु को बलि देना चाहिए, और धर्म के अनुसार जैसे दशरथ जी पुत्रेष्ट यज्ञ के लिए पशु यज्ञ कर रहे थे, क्या अश्वमेध यज्ञ, उसकी सब विधि होता है। आप जिह्वा को तृप्ति करने के लिए काली प्रसाद के रूप में मांस बिक्री करोगे मारोगे, और कोई यज्ञ है? इस यज्ञ को निंदा की गई। हाँ राजीव लोचन राजविद्या राजविद्या प्रभु राजविद्या प्रभु दीजिए। एक प्रश्न शास्त्र के निर्णय को निरूपण करने के लिए व्यक्ति व पाठक का बुद्धि बहुत सुनिपुण होना चाहिए, सूक्ष्म होना चाहिए, और तत्वदर्शी होना चाहिए। और वो व्यक्ति तत्वदर्शी बनता है जो गुरु की निर्देश में रह करके इस ज्ञान को अभ्यास किया। ऐसे कोरी शास्त्र अध्ययन से अनुभव नहीं होती है, इसलिए शास्त्र को पढ़ने के लिए भगवान इस ज्ञान को समझने के लिए उपदेश क्या दिए हैं? श्रद्धावान लभते ज्ञानंग तत्पर संजते इंद्रिया ज्ञानंग लब्ध्वा परम शांति अचिरेण अधिगच्छति, ये तक कहे। लेकिन फिर क्या बताए? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपलक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिन तत्वदर्शिन। एक तत्वदर्शी गुरु के पास जाकर इस ज्ञान को समझना चाहिए। श्रद्धा संयम तो रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये एक गुरु की शरणागत होकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सेवया, सेवा के द्वारा ही वास्तविक अनुभव प्राप्त होता है शास्त्र की। तो फिर वो निर्णय ले सकता है कि मुझे सत्र उठाना है कि केवल उपदेश देना है। इसके निर्णय को, हाँ क्या है आपके प्रश्न? माता जी को दीजिए, उनके फिर रह जाएंगे क्योंकि हमारे पर निर्दय के कि हम तो कुछ नहीं दे। हाँ वो एक्सेप्शनल केस है। कभी कभी हम देखते हैं ध्रुव महाराज ने कितने हजार साल तक राजशासन किए थे, ऐसे 36,000। तो कुछ एक्सेप्शनल केस होता है, जैसे कलयुग में लोगों के आयु है 100, तो 100 से भी कुछ ज़्यादा उम्र वाले भी रहते हैं एक में, तो कुछ एक्सेप्शनल केस होता है। और ऐसे भी 10,000 साल था, 12 साल तो उनको बीता था, तो मान लो वही 10,000 साल के अंदर मतलब बहुत वृद्धा हो चुकी थी, सब शरीर में चलने के लिए भी शक्ति नहीं था। हम गए थे वहाँ जहाँ सबरी की कुटिया हैं अभी भी हैं, पंपा सरोवर किष्किंधा के पास है ना, एमपी और किष्किंधा कर्नाटक में, तो परमपूज्य राधानाथ महाराज के भी ग्रुप गया था वहाँ, वो देखे कि जो सरोवर पूरा कमल खिला हुआ है, तो वर्णन किए कि ये कमल जो खिला है ये सबर की भाव की कमल है। हरे कृष्ण। तो ये इस प्रकार भाव लेकर के प्रतिज्ञा करना। हाँ बोलो।
हरे कृष्ण।
हटत कसम।
बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तो मेरे एक छोटा सा प्रश्न है कि जब चापका जी के साथ महाप्रभु के ये भेंट हुआ, तो चापका जी को जो संध्या महाप्रभु ने, तो उससे जो ये आते हैं कि कलयुग में जो पास जो ये निषेध है वो
चार,
हाँ उसमें से जैसे साधु में मांसाहार बढ़ जाए हैं, उसमें से अष्टमी जो लोग भी मना है, तो इससे क्या पता चलता है कि ये कलयुग में पशु बल इसमें तो ये जो मांसाहार के बढ़ने बढ़ना जैसे अष्टमी जो लोग इसमें तो इससे क्या हो सकता है कि कोई कलयुग में मांसाहार
कलयुग में और कोई यज्ञ की संस्कृति नहीं है। अश्वमध्य गोपालभ्यम संन्यास फलपौत्रिकम देवरोण सतत्पत्ति कलो पंच पांच विवर्जितम, पांच चीज विवर्जित है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि यदि कलयुग में सारे शूद्र हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, और प्रभुपाद भी कहते थे कि हमारे जो सोसाइटी है, हम एक सोसाइटी क्रिएट करना चाहते हैं ब्राह्मण की सोसाइटी, और इसका मूल मंत्र क्या है, ब्राह्मण यज्ञ करते, कौन सी यज्ञ, कलो संकीर्तन यज्ञ जजंती ही सुमेधसा, अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति कलयुग में संकीर्तन यज्ञ के द्वारा जजन करते हैं, तो उनकी प्रज्ञा बहुत उन्नत है, ठीक है। तो इसलिए और कोई यज्ञ न करके संकीर्तन यज्ञ करने से सभी प्रकार की हमारी अभीष्ट फल प्रदान करता है। जत्र संकीर्तन एव, नहीं नहीं उसकी ये श्लोक के बाद ही ये था, गुणज्ञ सार भागिनः जत्र संकीर्तन एव सर्व स्वार्थ अभिलभ्यते, कलौ सभा जयंती आर्ज्य धर्मज्ञ सार भागिनः जत्र संकीर्तन एव सर्व स्वार्थ अभिलभ्यते। तो जहां पर संकीर्तन यज्ञ होता है, जो कुछ हमारे अभिष्ट है ये संकीर्तन यज्ञ से पूर्ति हो जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय हो हरि प्रेमानंदे हरे हरे।